परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कई बार अनुभव किया है ध्यान के काल में, वह ध्यान में आनंद जो आता है वह कौन सी घड़ी है जिस समय हमें ध्यान में आनंद आता है। हम घड़ी की ओर न देख करके अपनी ओर देख ले तो बहुत अच्छा होगा, और अपनी ओर अपने आप को देखने के लिए अपने स्वरूप के बारे में भी चिंतन करना होगा। तो बात यह है कि जब तक हम अपनी सीमा से बाहर रहते हैं तब तक ध्यान में आनंद नहीं आता है। आनंद आएगा अपनी सीमा में। तो अब अपनी सीमा का उल्लंघन किन किन माध्यमों के माध्यम से हम करते हैं ये देखना आवश्यक है। कम से कम ध्यान में आनंद आने के लिए सर्वप्रथम रीढ़ को सीधी करके बैठें। आज आर्जव धर्म का कथन है ना, तो आर्जव का अर्थ क्या होता है? रिजूर भावो आर्जव, रिजुता अर्थात सीधापन। जिस व्यक्ति की रीढ़ में ही अभी सीधापन नहीं आया वह व्यक्ति ध्यान में कैसे आनंद का अनुभव कर सकेगा? पहले आरोग्य भी हो तो वैराग्य भी हो। आजकल जितने भी व्यक्ति हैं उनके रीढ़ में कम से कम भी कितने अंश का कौन होता है? किसी किसी के 90 अंश का कौन हो जाता है जो बूढ़े होते हैं, और उस समय उनके लिए तीसरे पैर की आवश्यकता पड़ती है। देखो एक की कमी एक के लिए आवश्यक है ना। रीढ़ जब सीधी नहीं थी तो फिर एक लटिया सीधी ले लो। सीधे हुए बिना चलना संभव नहीं है। तो ध्यान लिए भी और लिए भी सीधा सीधा होना आवश्यक है। मान लीजिए ये क्या कहलाते माइक कहलाते हैं, माइक को थोड़ा सा यूं कर दिया जाए यूं तो क्या होगा? उधर के सब आवाज आने लग जाएगी, क्योंकि माइक का मुख जो है जहां से ध्वनि निकल रही है उस ओर सीधा होना चाहिए। अब देखो तो सीधा साधी की बात तो यहीं से घटित हो रही है। हम सुन रहे हैं सामने से तो सामने ही दृष्टि होना आवश्यक है। हम तो कान से सुनेंगे और देखेंगे और किधर से, तो ऐसा संभव नहीं है। कान से सुनेंगे तो आंख को भी कान में लाना पड़ेगा, मतलब आंख में जो बैठा हुआ उपयोग है उसको बंद करके इस ओर लाना पड़ेगा। एक साथ दो फोन तो किए नहीं जा सकते, लाइन क्लियर नहीं है, नहीं तो बीच में संघर्ष हो जाए। संघर्ष का मतलब काम ही नहीं चल सकता। सीधा सीधा रास्ता क्लियर होना चाहिए तब कहीं हमारा कार्य हो सकता है। तो रीढ़ सीधी होने के उपरांत फिर भी हमारी एकाग्रता अभी संभव नहीं, योगों में अटका हुआ उपयोग को और भीतर की ओर लेना पड़ेगा। पहले विषयों में अटका हुआ उपयोग था उनको हटा करके योगों में ले आए, और योगों में से हमें उस दृष्टि को उस उपयोग को अपने आप में स्थिर करना है। एक अंश का भी कोण जब तक हमारे उपयोग में रहेगा तब तक उसके द्वारा जो कार्य होना आवश्यक है वह नहीं हो सकेगा। कितने अपने आप को सीधा बनाना चाहोगे तो वह स्पंदनहीन दशा का नाम एकाग्रता है। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम कहा, ध्यान के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। एक पर ही अग्र मैंने टिक जाना, एक को ही मुख्य बना लेना, इसका नाम एकाग्रता है। इसका अर्थ ये है कि हम लोग अपने उपयोग के द्वारा बहुतों को एक साथ मुख्य बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारे उपयोग में एकाग्रता न रह करके स्पंदनशीलता आई है। देखो जल के पास शीतलता भी है और तरलता भी है, बहने रूप स्वभाव भी है, अग्नि को बुझाने की क्षमता भी उसके पास है। इसके अलावा कोई भी उसमें आकर के देख लेता है तो उसका मुख उसे देखने में आ जाता है। यह जल की विशेषता हो गई। लेकिन जल यदि स्पंदित हो, तरंगायित हो, हवा के झोंके को खा करके उसमें यदि लहर उठ रही हो, तो आप उस जल के सामने जाकर के देखो तो अपना मुख दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो यह हम चाहते हैं अपने आप को देखना, किंतु जिसमें हम देख रहे हैं उसके पास क्षमता हो करके भी उस समय वह क्षमता समाप्ति है। जब तक जल तरंगायित रहेगा, वह लहरदार रहेगा, तब तक हम उसके भीतर देख करके अपने आप को देख नहीं सकते। और जल यदि वह निष्पंद हो जाए तो हम अपने आप के मुख को भी देख सकते हैं और जल के तल में पड़ी हुई वस्तु को भी हम देख सकते हैं। तो बात ऐसी है कि जल तो स्पंदित नहीं है, निष्पंद है, और अब हम अपनी आंखों के द्वारा देख ले, लेकिन यूं देखें, दृष्टि यदि चलायमान हो उस समय हम देखेंगे तो उस समय में भी हमें अपना मुख देखने में नहीं आए और न ही जल के भीतर पड़ी हुई वस्तु ही नजर में आए। जल की वक्रता समाप्त होने के उपरांत भी हमारी दृष्टि की वक्रता के कारण गे को हम सही सही पकड़ नहीं पाते, दो स्थानों में वक्रता रहती है। अब दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति जल की वक्रता होते हुए भी अपनी दृष्टि के द्वारा दृष्टि निष्पंद कर लेता है तो लहरों को तोड़ करके अपने दृष्टि को भीतर पहुंचाया जा सकता है। हम यदि ऐसी कोशिश करें, ऐसा प्रयास करें, ऐसी साधना करें तो यह संभव है। जिसकी दृष्टि में एकाग्रता रहती है उसको नियम से उस लहरों में भी रास्ता मिल जाता है, और लहरों में से एक बार रास्ता वह दृष्टि बना लेगी तो नियम से पानी के भीतर तक वह पहुंच करके जो पड़ी हुई वस्तु है उसको वह देख सकती है। ये दृष्टि की विशेषता हो गई। हमेशा ये परिवर्तनशील रहते हैं, क्योंकि वो पराश्रित होते हैं, इसलिए उनके निष्पंदता के बारे में चिंता करना ये बेकार है। चैंपियन वही माना जाता है फोटोग्राफर, कौन? जो चलते हुए व्यक्ति को फोटो देख ले ले और खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ, खड़े क्या हो जाओ, जिस समय खड़े हो जाओ उस समय बटन नहीं दबा तो हमारे खड़ा होना बेकार हो जाएगा, लेना हो तो ले लो, को वो भी तो आश्चर्य पराश्रित है, बटन यदि नहीं हिला तो क्या करोगे? तो इसलिए गे के परिवर्तन के साथ ही सहज रूप से यदि फोटो लेना चाहते हो तो कोई मना तो करता नहीं। बैठे हैं, उठे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु अपने अपने परिणामशील होने के कारण स्वभाव के अनुरूप परिणाम कर रही है। उसको यदि आप देखना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को पैनी बना दीजिए। इसी का नाम ध्यान है। अपने यहां भेद विज्ञान की बड़ी विशेषता बताई गई है कि आप लोगों ने कभी सोचा भेद विज्ञान का अर्थ क्या? भेद विज्ञान का अर्थ सही मायने में यह है कि जो बहुत सारे हैं और उनमें से भेद करना, यह भेद विज्ञान नहीं, किंतु भेद करके भीतर पहुंच जाना यह भेद विज्ञान है। भेद करके भीतर पहुंच जाना इसका नाम भेद विज्ञान है। और जिस समय भीतर पहुंच जाएंगे तो ऊपर की कोई भी परिस्थिति हमारे लिए बाध्य नहीं करेगी, तुम रुक जाओ। लहरों की वजह से हमें ऊपर देखने में नहीं आता। यदि हम डूब जाएं भीतर तो ऊपर लहरों के कारण तो दृष्टि में स्खलन आ जाएगा, किंतु भीतर डूबने वालों को वह किसी भी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचा सकेंगे लहर। और ये भी ध्यान रखना, लहर ऊपर भी रहती है और भीतर भी रहती है, लेकिन भीतर की लहर अलग हुआ करती है और बाहरी लहर अलग हुआ करती है। बाहरी लहर दृष्टि के लिए विरोधक बन सकती है, लेकिन भीतरी लहर विरोधक नहीं बनती। भीतर केवल स्पंदन जैसा रहता, भीतर उसका स्पंदन रहता, लेकिन वह स्पंदन कैसा रहता? समूचा रहता। स्पंदन वह समूचा रहता। पानी कहीं भीतर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, किंतु जो ही हवा और पानी ये एक साथ भिन्न भिन्न क्षेत्र में रह जाते हैं, वहां पर हवा की जोर होने के कारण पानी के भीतर यूं 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 लहर उठ जाती है। अर्थ यह हुआ कि पानी के भीतर हवा की मात्रा कम होने के कारण वहां पर लहर नहीं उठती, किंतु पानी के अग्रभाग के ऊपर हवा चूंकि बहुत खेलती रहती है इसलिए वहां पर लहर उठ जाते हैं। जो व्यक्ति एक बार वस्तु में डूब जाएगा तो कोई भी पर्याय उसे बाध्य नहीं करेगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसलिए ध्यान में लीनता की बात कही गई है। तो हमारे दृष्टि में भेद करके भीतर जाने की यदि क्षमता आ जाए तो नियम से हम उस कार्य को कर सकते हैं। और जिसकी दृष्टि में भेद करने की क्षमता नहीं आई है तो वह ऊपर ऊपर ही देखेगा तो लहर दिखेगी, इसके कारण वह राग द्वेष में और उलझता चला जाएगा। और जितना वह उलझता जाएगा उन्हीं लहरों में, तब तक तो वह स्वयं को भी नहीं देख पाएगा और न ही उस जल के भीतर रखी हुई वस्तु को ही देख पाएगा। कहता यह है मैं देख रहा हूं, केवल वह सतह सतह पर ऊपर ऊपर ही देख रहा। और ऊपर ऊपर देखना तो सभी देखते हैं, क्यों क्यों भैया क्या हो गया, बुखार आ गया, देखो हाथ देखिए, लुकमान हकीम के समान कहीं से क्यों करने लगे, कहीं नाड़ी आती होगी, क्या है मालूम है, पता नहीं। केवल फड़कन को आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, फड़कन को तो वैसे देख सकते हैं, लेकिन अर्थ ये हुआ ऊपर ऊपर वह देख लेता है। रोग के भीतर जाकर के कहां पर किस रूप में रोग उत्पन्न हुआ है, क्या बाधा हो रही, इसका ज्ञान उसे नहीं होता। तो इस प्रकार नाड़ी देखना तो 5 दिन में भी नहीं है, 5 मिनट में आ सकता है। नाड़ी देखने का मतलब क्या, जो स्पंदन है उस स्पंदन को देखो, स्पंदन को देखो, क्या स्पंदन क्यों हो रहा और कहां से स्पंदन हो रहा उसको देखो। यह नाड़ी जो बता रही है यह कमवीसी क्यों है, कमवीसी तो ठीक है लेकिन क्यों है, किस रूप में वह फड़कन है, इसके लिए चरक पूर्ण होता है, निगट्टी पूर्ण हो जाती है, फिर और अनुभव अलग हो जाते हैं, फिर इसके उपरांत कहीं जा करके उसे अनुभव हो जाता है नाड़ी के फड़कन को देख करके, वह भीतरी रोग की पहचान कर लेता है, वात के द्वारा है क्या, पित्त के द्वारा है क्या, कफ के द्वारा है क्या, तीनों के द्वारा है क्या, दो के द्वारा है किसके द्वारा। तो इसके लिए यह भेद विज्ञान नहीं, नाड़ी को देखना भेद विज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन का नाम भेद विज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान का नाम भेद विज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान के बिना भेद विज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन सम्यक ज्ञान मात्र भेद विज्ञान नहीं है। भेदं कृत्वा यत विज्ञानं तत भेद विज्ञानं, और भेदस्य यत विज्ञानं तत भेद विज्ञानं। भेद का ज्ञान होना और भेद करके ज्ञान होना, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेद या वर्णादि अरु रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। हाँ, लेकिन आप की छैनी कहां पर पढ़नी चाहिए, भेद विज्ञान की संधि स्थान पर पढ़नी चाहिए, और उसके ऊपर भी प्रहार ऐसा होना चाहिए कि जो एक जैसा लग रहा है वो दो हो जाए, पृथक पृथक हो जाए। तो उस संधि स्थान पर जो पटक देता है अपनी छैनी को भेद विज्ञान रूपी छैनी को, वह व्यक्ति नियम से भेद विज्ञानी माना जा सकता है, वह ध्यान की बात हो जाती है। वह भीतर संयम के माध्यम से ऐसी साधना करता 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 पूरे की पूरी पृथक कर लेता है कि हंस होता है और कौवा भी होता या बगुला भी होता है। हंस के चोंच के भीतर एक ऐसी विशेषता रहती है कि वह दूध को और जल को पृथक पृथक बना करके सेवन कर लेता है। दूध को तो सेवन कर लेता, जल को नहीं करता। मतलब यह है कि मिली हुई वस्तु को कर लेता। जिसके पास भेद विज्ञान आ जाता है वह सीधे अपनी वस्तु तक पहुंच जाता है, और अपनी वस्तु तक पहुंच जाता है तो राग द्वेष नहीं कर सकेगा। दूसरे वस्तु के पकड़ में जब तक वह लगा रहता है तभी तक वह रागी द्वेषी हुआ करता है। इससे स्पष्ट है स्व को छोड़कर के पर जितने भी है वो सारे के सारे वक्रता के प्रतीक हैं। हम अपनी ओर चले जाएं तो इसमें सीधापन है, हम अपने आप को छोड़कर के बाहर चले जाते हैं तो एक अंश का भी कोण हो जाता तो नियम से पर ही पकड़ में आएगा। और पर पकड़ में आ रहा है क्या नहीं, ये किससे जाने हम, राग द्वेष यदि हो रहे हैं तो पर पकड़ में आ रहा है। ज्ञान का विषय यदि ज्ञान ही बन जाए, स्व बन जाए, तो नियम से राग और द्वेष नहीं होंगे। किंतु वह व्यक्ति ज्ञान के साथ अपने आप की तन्मयता नहीं अनुभव कर रहा, किंतु बाहरी पदार्थों के साथ अनुभव कर रहा है, इसलिए उसमें वक्रता नियम से है। सीधी ही म्यान में तलवार जा सकती है, यदि म्यान टेढ़ी है तो तलवार टेढ़ी हो नहीं सकेगी, जा ही नहीं सकेगी। थोड़ा भी आप प्रवेश के समय पर अपने आप को नहीं संभालेंगे तो दीवार से टकरा जाएंगे। अब ये कह रहे कि हमने 10 लाख रुपए खर्च किया है बिल्डिंग को और हमें ये जो है, तो वो ये कहता है 10 लाख रुपए खर्च किया है, इसका अर्थ जो है मैं आंख तुम्हें दे दूं, एक थोड़ा इंच भी इधर का उधर कदम पड़ जाएगा तो बाहर चले जाओगे। अब देखो प्रवेश की बात है, और आप जिस समय सीढ़ियों के ऊपर चलते रहते हैं, सीढ़ियों के ऊपर चलते रहते हैं, और वो भी सीढ़ियां कैसी हैं, सीमेंटेड हुई सीढ़ियां नहीं, नसेने की सीढ़ियां। नसेने की सीढ़ियां में क्या रहती, सब पोल है, सब पोल रहती है, केवल उसमें पैर लगे हुए रहते हैं जहां पर पैर रखना होता है, और पैर जो है नहीं समझे, पैर जल्दी से जल्दी रख दिया, और रख देने से क्या हो गया, पैर फिसल गया, अब थोड़े से अंतर हो गया, क्या बात, थोड़े बहुत तो कम से कम माफी तो करा लेना चाहिए, वहां माफी नहीं चलेगा। फिर एक पैर फिसल गया, दोनों हाथ में जो दृढ़ता थी वह भी स्खलित हो गए और एक अधर में पैर रह जाएगा, तो आराम से नीचे आ जाएगा। थोड़ी सी वक्रता का यह प्रतिफल निकलता है। हाँ, तो उस समय आप आंख मिच करके नहीं चढ़ते, चलना फिर भी आंख मिच करके संभव है, चढ़ने में आंख नहीं मीचा जाता और उतरने में भी आंख नहीं मीचा जाता, तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता। थोड़ी वक्रता हमारे जीवन को वह बिल्कुल धो सकती, समाप्त कर सकती है। हमारी वक्रता ये ऐसी क्यों हो रही है? ये लोभ लालच की बात है। लोभ लालच के वशभूत होकर के हमने अपने स्वभाव को जो बिल्कुल सीधापन था उसको ऐसा मोड़ दिया है, ऐसा मोड़ दिया है कि वह बच्चों को आनंद कब आता है, बच्चों को आनंद कब आता है? बच्चे चलेंगे तो तिरकम से चलेंगे, भागेंगे तो भी तिरकम से, और कुछ बोलेंगे उसमें भी तिरकम। ऐसे क्यों? उन्हें उसी में आनंद आता है। संसारी प्राणी की भी यही रीत है, उसे सीधे चलने में, सीधे जानने में, सीधे काम करने में कभी भी आनंद नहीं आया, क्योंकि स्वभाव में विरले को ही आनंद आता है। विभाव में संसारी प्राणी पूरे के पूरे आनंद का अनुभव कर रहा, वह आनंद नहीं बल्कि दुख है। विभाव के परिणति का नाम ही एक प्रकार से वक्रता है। तो जली वक्रता और क्या है, देख लीजिए, जल में जिस समय वस्तु को हम पटक देते हैं, वायु में से नीचे पटकेंगे तो वह सीधी सीधी वस्तु आ जाएगी, किंतु जल में पटकेंगे तो क्या होगा, जल में वह वस्तु कभी भी सीधी नहीं जाती, यूं यूं तरंगित होकर के यहां पर पटके तो यहां पर आकर के तल में वह टिक जाएगी, यह उसकी वक्रता है। ऐसा क्यों हुआ? क्षेत्र के अनुरूप इसी प्रकार की उसकी गति बनती है। संसार में मोह राग द्वेष के साथ जब तक यह संसारी प्राणी चलेगा तो नियम से जल में पटकी हुई वस्तु के अनुरूप ही अपने कदम को रखेगा, वो सीधा नहीं। इसीलिए जब भगवान चलते हैं तो भगवान भी क्योंकि संसार में हैं, इसलिए वो भी सीधी नहीं चल पाते। मतलब सीधा कोई भी पैर रख ही नहीं सकता, रख करके देख लो, रख करके देख लो ना, घोड़ों के पास मोड़ना नहीं पैर को, महाराज ये तो बहुत कठिन है। तो हम अपने बगल में दो वैसे आके यहां रख सकते हैं, फिर वादे तो ये काम हो सकता है, उसके बिना यह संभव नहीं। तो भगवान हो कोई भी हो, जब तक चलेंगे तो उनके भी इसी प्रकार पैर यूं यूं होंगे और मुड़ना पड़ेगा, आप सीधा खा ही नहीं सकते। क्या मतलब सीधा खा ही नहीं सकते? ग्रास ले लिए, दूसरे को भी सीधा खिला नहीं सकते और स्वयं भी सीधा नहीं खा सकते। आप लगता है कि हम बहुत सीधे हैं, सीधे किसी कहां है, आपके कौन सा सीधा कार्य होता बता दीजिए हमें, न सीधा देखते हैं, सीधा देखेंगे तो अब मैं बता दूंगा अभी क्या होता है। आपके देखने में टेढ़ापन, आपके चलने में टेढ़ापन, आपके खाने में टेढ़ापन, आपके बोलने में टेढ़ापन, आपके बैठने में टेढ़ापन, और आपके सोचने में टेढ़ापन, क्योंकि सोचना ही स्पंदन है और स्पंदन है जो वक्रता है। इसीलिए भगवान ने कहा है सोच के साथ जो कोई कहेगा वह गलत कहेगा, सोच के साथ और कोई भी निर्णय लेगा वह गलत निर्णय लेगा, और जो कुछ भी चलेगा वह गलत चलेगा। इसलिए जब तक सोच है वे कहते हैं अफसोस मैं बोलूंगा नहीं, और भगवान कभी भी बोलते नहीं, सोच करके नहीं बोलते। और हमारे लिए तो आज्ञा दे दी सोच करके बोलो, क्यों? उसके बिना हमें चलना नहीं सकता। 13वें गुणस्थान तक 12वें गुणस्थान तक तो सोचने का कार्य चलता है, फिर बाद में सोचना नहीं होता, और बिना जो सोचे काम होता वह सही होता है, और सही मायने में वही होता है। यथावत, जैसा पदार्थ है वैसा देखना बिना सोचे ही संभव है, अर्थात सोच के ऊपर उठ करके। और जब तक बोलते जाओगे आप सोच करके, नियम से गलत निकलेगा। इसलिए 12वें गुणस्थान तक असत्य भी उभय भी चलते हैं। इसलिए हम असत्य बोलना नहीं पसंद करते, अनुभव दूसरे को इस प्रकार नहीं, केवल हम सत्य बोलेंगे। उस सत्य के लिए प्रतीक्षा वहां तक करते हैं वो, जब ज्ञान एकाग्र होता है तो सही जानता है, सही बोलता है और सही चलता है। फिर भी चूंकि स्पंदन होने के कारण अभी भी टेढ़ापन उनमें भी है, इसलिए उनको भगवान नहीं कहते। सही मायने में हम अपने मतलब को निकालने के लिए उनको भगवान कह देते हैं, लेकिन वो सही भगवान है ही नहीं। जब हमारे साथ बोलते रहते हैं तो सही भगवान कैसे हैं? सामान्य व्यक्तियों के सामने वो बोले, चक्रवर्ती आ जाए तो विशेष रूप से बोलते बताते, क्योंकि विशेष वह श्रोता माना जाता है। तो वक्ता और श्रोता के बीच में तो गठबंधन तो रहता ही है, पार्टी बनी हुई है वो। तो अर्थ ये निकला कि जब तक सांसारिक दशा है तब तक टेढ़ापन के बिना और कोई काम ही नहीं, सीधा नहीं होता। लेकिन जब यहां से सिद्ध होने के उपरांत तो वहां तक 7 राज्य तक पहुंच जाते हैं, उस समय में भी चलते तो हैं, फिर उस समय में वे चलते नहीं हैं, उस समय में वे गमन नहीं करते। उस समय में क्या करते हैं? उस समय में ऊर्ध्वगमन स्वभाव आ जाता है। तो ऊर्ध्वगमन कहते हैं, वो गमन जो है एक प्रकार से चलने का नाम है, गमन जो है एक प्रकार से चलने का नाम है। और ऊर्ध्वगमन नहीं होता, ऊर्ध्व तो चढ़ना होता है, चलना नहीं होता, चढ़ना होता है। तो यह उस समय चलना नहीं होता और पैर पैर कुछ भी नहीं और यूं उड़ जाते। एक तो रिद्धि में इस प्रकार की विशेषता आ जाती है, पैर चलेंगे नहीं, यूं खड़े हो जाएंगे और वो चले जाएंगे, यह एक उसकी विशेषता मानी जाती है। और पैर चलाना वगैरह ये सब स्पंदन है, और स्पंदन मात्र एक प्रकार से विभाव है। यह स्पंदन आत्मा के भीतर ज्ञान संबंधी और प्रदेश संबंधी दो प्रकार के होते हैं, और यह स्वभाव से विमुख होने के बाद ही हुआ करते हैं। स्वभाव में जो स्थित होता है वह कभी किसी भी प्रकार से तस्य मस नहीं हो सकता, वह इतना एकाग्र हो जाता है कि कुछ भी नहीं हो सकता उसका। वह अनंत काल के लिए भी वहां पर खड़े रहे बैठे रहे, कुछ भी उनमें विक्रिया नहीं होने वाली है, क्योंकि स्वभाव में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं और विभाव में किसी प्रकार की प्रक्रिया स्वभाव की नहीं। केवल वह एक श्रद्धान के माध्यम से ही कह रहा है। तो भेद विज्ञान अब हम बता देते हैं, भेद विज्ञान भेदने की क्षमता दृष्टि में कैसी है। दृष्टि में जलाने की और भेद करने की, छेद करने की क्षमता नियम से है। दृष्टि को प्राय करके अग्नि तत्व से बनी हुई मानते हैं, लौकिक पद्धति है, उसका भी थोड़ा सहारा लेकर के हम चर्चा करें तो बहुत अच्छा होगा कि दृष्टि के पास अग्नि कहाँ है, कैसी है। आप लोग जब कभी भी ध्यान से देखना एक किसी पदार्थ को, ऐसी एकाग्र होकर के देख लेना, उसी पदार्थ को देख लेना, और इर्द गिर्द उसके पास जितने भी पदार्थ हैं वो सारे सारे गायब हो जाएंगे। आपकी दृष्टि की स्पंदनता इसका प्रतीक है। और जैसे जैसे उस वस्तु में भी आप विशेष रूप से देखेंगे तो नियम से उस वस्तु से पार आपकी दृष्टि हो जाती है। इसमें केवल एकाग्रता की ही बात आती है, यह एक जादू वगैरह नहीं, किंतु इस प्रकार की शक्ति आ जाती है जो कि ट्रांसफॉर्मेंट एक पार आर पार हो जाते वह दृष्टि। दीवार के इस ओर बैठे हैं तो दीवार के बाहर वाली वस्तु भी देखने में आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब काज के समान वह दीवार बनने लग जाएगी, जब उस दृष्टि वह उस पदार्थ को छेदने की और भेदने की क्षमता रखती उस समय आ जाएगी, पार हो जाएगी। जब आर पार हो जाएगी तो फिर दृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आंख मीचे मीचे भी इतनी यदि एकाग्रता हम कर लेते हैं तो उस वस्तु का ज्ञान हमें होने लग जाता है। अवधि ज्ञान की क्या विशेषता है आप थोड़ी सी सोच लीजिए। अवधि ज्ञान के द्वारा क्या आंख के माध्यम से अवधि ज्ञान होता है? क्या छूने के माध्यम से अवधि ज्ञान होता है? क्या होता है? इस प्रकार का एक क्षयोपशम अपने आप उपलब्ध होने लग जाता है कि वह अवधि ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम रहता है, तो इन कोई आवश्यकता नहीं होती। ये आलंबन कुछ क्षमता लेने के लिए ही है। और जैसे जैसे एकाग्रता आती चली जाएगी वैसे वैसे नियम से वह वक्रता हटेगी, सीधा आ जाएगा तो सीधी वस्तु नियम से भेद करके चली जाएगी। सीधी वस्तु सूक्ष्म होगी और तेज गति वाली होगी, और टेढ़ी वाली वस्तु बहुत कम गति वाली होगी, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अब चलिए आप पहले महाभारत इत्यादि हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय जो रणांगन में कूदते हैं युद्ध करने वाले, अस्त्र और शस्त्र दो प्रकार के प्रयोग करते हैं। शस्त्र तो वह है हाथ में लेकर के फेंका नहीं जाता, जैसे तलवार। अस्त्र वह होता है जो फेंका जाता है। अब फेंकने को हम मिसाल बना ले, पहले धनुष और बाण, बाण को उस व्यक्ति के ऊपर फेंकना है जो वैरी खड़ा है। बाण सीधा होना चाहिए, एक पहला बाण सीधा होना चाहिए। बाण यदि टेढ़ा हो नियम से वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, ध्रुव तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन सीधे बाण ले लिया, बाण लेने के उपरांत धनुष पर चढ़ा दिया। अब डोर को कान तक खींचते हैं, डोर को कान तक खींचते हैं। जब कान तक खींचते हैं उस समय डोर में कितने अंश अंश का कोण हो जाता है? डोर जब तक सरल रहे तब तक बाण तीन काल में पहुंचेगी नहीं, गति नहीं पाए। तो एक में वक्रता दे करके और उसको फेंक देते हैं और वह चला गया बाण, निशाना ठीक ठीक पहुंच गया। अब देख लीजिए पहले व्यक्तियों की निशान साधने की पद्धति क्या थी और धीरे धीरे किस प्रकार उस पद्धति में अंतर आता जा रहा है, इसके द्वारा हम जो प्रातःकाल सूत्र पढ़ करके आए ना, भरतैरावतयो वृद्धिरासो षट् समयाभ्याम उत्तर्पणे विस्तर्पणे ध्यान, अंतर आता जा रहा है। कैसे अंतर आता जा रहा है? पहले तो धनुष और बाण थे, चूंकि दृष्टि में निष्पंद अवस्था रहती थी और साथ साथ हाथ में भी निष्पंद अवस्था रहती थी और साथ साथ दिल में भी धैर्य रहता था, लेकिन वह क्षत्रियता धीरे धीरे कम होता है, कम होती चली गई। देख लीजिए पकड़ने की बात है, और कैसे दिल में और हाथों में और दृष्टि में चंचलता आ गई, तो उसके उपरांत आ गया आपके पास कौन सा आ गया, बंदूक आ गया। नहीं समझे? बंदूक आ गया का मतलब क्या? बंदूक आ गया का मतलब यह है निशाना साधने में आपकी एकाग्रता समाप्त हो गई, और दूसरी बात यह है कि आप छुप करके गोली चलाने लगे, तो अर्थ यह हुआ आपके दिल में भी डर आ गया और हाथ में, क्योंकि दिल में डर आने से हाथ में कपकपी, और जब हाथ में कपकपी आए तो कान तक वह डोर को कैसे खींचेगा, जिस डोर को खींचने के लिए आज के किंगकॉन्ग भी फेल हो जाते हैं, और वह खींचते जाओ, प्रतीक तीर के लिए एक बार खींचना और छोड़ना, प्रतीक तीर के लिए एक बार खींचना और छोड़ देना, तब कहीं जा करके बाणों की वर्षा करके कौन किसको वे गांगे हैं, भीष्म वो उनको किसी ने बाण के शैया के ऊपर ही सुलाया था। कैसे सुलाया होगा? शैया के ऊपर थोड़ी सुलाया जाता, चारों ओर से बाण छोड़ 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 करके ऐसे अपने आप में वह गिर गया, तो वही शैया बन गई। तो पहले हाथों में स्थिरता और दृष्टि में स्थिरता और दिल के धड़कन में कमी, जिसको बोलते हैं फौलाद। अब यह कमी आ गई, तो कमी आ गई तो मतलब यह दृढ़ता स्थिरता की कमी आ गई, अभाव हो गया, स्पंदन होने लगा, दिल की धड़कन यूं यूं होने लगे, इसलिए अब तो भैया तुम बाण और इसके तो काबिल नहीं है, अब तो बंदूक ले लो। अब देखो इसमें भी निशाना चूकने लगा, नहीं समझे? अब जब इसमें भी निशाना चूकने लगा तो फिर वो सोचा अब तो स्टेन गन लाओ, मतलब क्या है, भरोसा एक गोली के ऊपर भी नहीं रहा, पहले एक बाण पर भरोसा था, अब वह तो चला गया, अब जो है स्पंदन होने के कारण बंदूक के ऊपर एक गोली के ऊपर, अब तो भैया इतने हैं कि गड़बड़ हो जाए, कहीं किसी के पकड़ में ना आए, इसलिए छुप करके एक गोली के साथ पर 50 गोली बरसा करके चले जाते। उनके न एकाग्रता है, न दिल के धड़कन उनका ठीक है, और न ही उनके बाहू में प्रताप है, न में दृष्टि में स्थिरता है, न विवेक है, कुछ भी नहीं, वह एकमात्र केवल कायरता जैसा काम आ गया है। छुप छुप करके जिस समय लड़ाई लड़ना प्रारंभ हो गया, एक लेख पढ़ा था हमने अभी अभी कि ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था सैनिकों को, और उन सैनिकों में भी कुछ अनेक प्रकार के भेद को लेकर के सैनिक रहते हैं, एक 50 या 100 व्यक्तियों के ऊपर एक था कमांडर, उनके लिए भी ऑर्डर नहीं मिला था। स्थिति ऐसी है कि जब तक बाहर ऊपर से ऑर्डर नहीं है तब तक कुछ नहीं, और बार बार इधर देखो उधर देखो उधर देखो, लेकिन शिक्षण तो दिया जाता है उन्हें धैर्य का ही। वो उस समय उस कार्य के उपरांत लिखते हैं लेख में कि मैं अपने आप को वहां पर कायर जैसा अनुभव कर रहा था, क्योंकि शत्रु से मैं छुप रहा था, क्योंकि मुझे आज्ञा है छुपने की, मतलब छत्री जो है छुप करके कभी काम नहीं करता, लेकिन ऑर्डर है तो इसलिए जिस दिशा में टैंक आने की संभावना थी उस दिशा में तो हम हैं, और उससे विपरीत दिशा में जिस ओर हमारा देश है उधर जो है बैरियों के टैंक आकर के सामने खड़े हैं। उस समय वह सोचता है, मैं सोच रहा, मतलब लिखने वाला कहता है कि अब हम क्या करें। तो आज के युद्ध और पहले के युद्ध कितना अंतर हो गया। युद्ध के पीछे पहले धर्म युद्ध लगा जाता था, धर्म, फिर बाद में युद्ध। अब क्या है, अब कौन से युद्ध? अब तो एयर कंडीशन में भीतर बैठ करके वहां पर युद्ध, वहां पर ना रणांगण में वह प्रतिपक्षी है ना पक्ष है, कोई भी नहीं। आज विमान चले जाते हैं और बम पटक करके आ जाते हैं, आज वहरी के ऊपर नहीं जनता के ऊपर बम पड़ रहे हैं। ये क्या है? कुछ नहीं। जहां पर प्रतिपक्षी का हाथ उठता था प्रतिपक्षी के ऊपर, तो वह मनुष्य हो और वह लड़ने के लिए तैयार है और मान नहीं रहा तो उसके ऊपर शस्त्र उठाते थे, महिला के ऊपर नहीं, बालक के ऊपर नहीं। और जो व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है शस्त्र नीचे रख देता उसके ऊपर नहीं। और आज क्या, आज तो एक प्रकार से तानाशाही। तानाशाही भी कहां है, आज शक्ति कहां है लोगों के पास? तानाशाही कुछ भी नहीं है, दूसरे कोई और ही नाम देना पड़ेगा, नाम कोश में तो है ही नहीं, मैं कहां से बनाऊं आप? किसी भी में नहीं उतर रहे हैं। तो इससे फलीभूत हो रहा है दृढ़ता समाप्त हो गई, और दृढ़ता समाप्त का अर्थ यही है पैर कांप रहे हैं, जिल धड़कन जो है बढ़ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में भी अंतर आ गया है, दृष्टि में चंचलता है। और आचार्यों ने कहा उस व्यक्ति की दृष्टि में सबसे ज्यादा चंचलता रहती है जिसके जीवन में भय बहुत आ चुका है, भय से घिरा हुआ जीवन ही सबसे ज्यादा चंचल हो उठता है। सबसे डरपोक कौन होता है? वो चंचल होता है। और चंचल कौन होता है? अस्थिरता का अनुभव करता है। अस्थिरता का कौन अनुभव करता है? जो स्थिर आत्मद्रव्य है उसको छोड़ करके, अपने स्वभाव को छोड़ करके जो बाहर आ जाता है वह अस्थिर हो उठता है। इस प्रकार युद्ध की यह परंपरा और उन अस्त्र शस्त्रों की परंपराओं को देखते हुए ज्ञात होता है, महाभारत के जमाने में जो छाती जो वक्षस्थल था आज किसी के पास नहीं है। इससे सिद्ध हो गया चंचलता बढ़ती चली जा रही है, और आगे जा करके ये अब स्टेन गन भी समाप्त, अब तो बिल्कुल क्या करना है, अब क्या करना है, बम्ब पर आ गए, अनुबम्ब के ऊपर। इसका अर्थ जो है इनका दिल भी और दिमाग भी दोनों खराब हो चुके, अर्थात पागल अब रणांगण में आया है। और पागल की चपेट में कौन आते हैं? छोटे छोटे बच्चे आते हैं, और कोई नहीं आएगा, कोई भागने वाले तो नहीं आए। तो पटकने वाले दिमाग खराब, और आज जो है उसके ऊपर भी भरोसा नहीं, अब तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया कि अभी अभी पढ़कर के आ रहा हूं संकट विमोचन रोबोट। हे भगवान, क्या क्या आविष्कार दिल और नई बात कोई नहीं, आज सब पुरानी है, क्योंकि ज्ञान अनंत काल से प्रवाहित होता आ रहा है। आज का ज्ञान तो बहुत कमजोर है, और इससे आगे आगे बड़ी हुई सभ्यता भी मानी जाती है, एक लेख पढ़ा था बरमूडा के ऊपर एक शोध हुआ बताते हैं। तो बरमूडा एक कोई स्थान है जो समुद्री इलाका में, वहां पर कोई भी ऊपर से भी वायुयान चले जाते हैं तो वो भी नीचे गिर जाते हैं, और वहां पर कोई जहाज वगैरह चले जाते हैं वो भी सब वहीं पर फंस करके चले जाते हैं। इसके ऊपर शोध करके किसी ने एक ऐसा निकाला निष्कर्ष, उनका कहना यह है कि आज वहां पर बरमूडा के क्षेत्र में वह सभ्यता है जो 15,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है, कि आज लगभग जो है 1,000 वर्ष सभ्यता मान करके भी चलें तो इतने में इतना विकास हुआ है, तो 15,000 में कितना विकास हो गया होगा वह आपको वहां पर जाते ही यूं कर देते हैं। जो तहसील स्तर पर खिलाड़ी है और वो उसको विश्व स्तर पर यदि खेल कूद में पहुंचाया जाए तो वहां पर जाते ही वो फेल हो जाए। यह दशा इनकी हो रही है कि रडार के माध्यम से, ऑटमिक शक्ति के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से यदि आप लड़ाई लड़ाएंगे तो क्या है, अब वह निर्माण किया जा रहा है कि फौज जो है वह भी लोह की फौज, लड़ने वाले भी वही और जो मरने वाली है वो भी, दोनों जो है जड़ हो गए हैं, और इन जड़ों की लड़ाई को देखने वाले कौन होगा वो वीर। केवल बच्चों जैसे खेल हो रहा है, बच्चे फिर भी इसको छोड़ दे, फिर भी आप लोग ऐसे कह रहे हैं वैज्ञानिक युग। हाँ ठीक ठीक भैया, इसलिए हमने कहा वेद विज्ञान की बात कह दी कि इनके पास वेद विज्ञान है ही नहीं, विशेष विज्ञान है ही नहीं, केवल एकमात्र उल्टी चाल से चल रहे हैं। यह केवल स्पंदन की बात है। आज जितने स्पंदन की बात हम सोच रहे हैं और उसको हम अपने आविष्कार मान रहे हैं, उतने दिमाग भी सोचता होगा, स्पंदित होगा, और इसलिए प्रत्येक दिमाग आज त्रस्त खराब होती जा रहे हैं। नींद नहीं लग रही है। क्यों नींद नहीं लग रही है? कि ऐसे भय की सामग्री इर्द गिर्द प्रत्येक जीवन में आकर खड़ी हो गई है कि वह नींद लग नहीं सकती। निद्रा में भी वह यही बक रहा, कोई गोली अगर खा करके नींद भी आ जाए आर्टिफिशियल, वह यही बक रहा। कौन सुना था हमने कि आर्टिफिशियल जो नींद ली जाती है उस समय स्वप्न नहीं पड़ते, मतलब क्या ज्ञान काम नहीं करता, तो क्या मूर्छित अवस्था जैसी हो जाती है। तो आज का जीवन भय के द्वारा इतना त्रस्त हो चुका है, और यह नौबत आ चुकी है कि एक व्यक्ति कोई भी अपने इस कंप्यूटर सिस्टम से आणविक शक्ति का प्रयोग कर देता है तो सामने वाला व्यक्ति व्यक्ति नहीं करेगा, अब यहां की तरंग वहां पर जाएगी, चली जाएगी कहां पर, उससे अगेंस्ट जिसके ऊपर हावी होने वाला उसके वहां से अपनी शक्ति का प्रयोग कर, मशीनी करेगी। अब यह भी स्थिति आ सकती है बिना ऑर्डर भी अब मशीन कभी कभी काम कर सकती है, बिना ऑर्डर भी, और 2-3 बार रडार इस प्रकार के सूचना दे चुके हैं। अमेरिका ने सोचा है कि क्यों भैया चालू हो गया है क्या, क्या चालू, तो यहां पर हमारे रडार तो सूचना दे रहा कि आणविक शक्ति का प्रयोग हो चुका है, नहीं नहीं थोड़ी प्रतीक्षा करिए कहीं मिस्टेक हो गई। देखा गया तो रडार में खामी थी। अब वो इस एक रडार की खामी को देखने वाले दूसरे रडार और फिट कर दिया गया, तो संभव है एक व्यक्ति को निगरानी के लिए दूसरे को रखा जाए, दूसरे के लिए और तीसरा और चाहिए। तो इस प्रकार एक दिन नियम से हाथ में रखा हुआ वह अपना काम कर जाएगा, क्योंकि प्रकृति का परिणमन किसी एक पुरुष के हाथ में नहीं है। प्रकृति का परिणमन अर्थात पुद्गल का परिणमन किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जो कर्म बंधे हैं आपके परिणामों को लेकर के, कब उदय में आएंगे और कब उसमें संक्रमण होगा, कब विस्फोट होगा, आप इसको कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते। बैठे रहिए अपने परिणाम रडार रूपे परिणाम को देखते हुए, थोड़ी भी कमी आ जाएगी तो आपका पूरा का पूरा जीवन ध्वस्त हो सकता है। यदि जीवन पर के द्वारा ध्वस्त हो सकता है तो हम अपने परिणामों के द्वारा कर्मों को भी ध्वस्त कर सकते हैं, ये भी एक आत्मिक शक्ति है। लेकिन इस ओर किसी का दृष्टिपात नहीं जा रहा, ये इतना चंचल हो चुका है जीवन, वह कुछ सोचने के लिए भी बाध्य नहीं हो पा रहा, ये सोचने के लिए दिमाग काम नहीं कर रहा। जिस व्यक्ति का दिमाग नहीं काम कर रहा है उस व्यक्ति के लिए उपदेश नहीं है। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि में पहले आया था प्रज्ञावान। पकड़ने की क्षमता आपके पास है तो ठीक है। रेडियो स्टेशन कब लगता है? रेडियो स्टेशन आपके लगाने से लगते है क्या? बोलो। नहीं, 2 बजे चालू हो जाते। 2 बजे वह आपको कहकर के चालू कर देते नहीं, वो तो तैयारी है हमेशा। किंतु जिस समय आप चाहते हैं उस समय आप उस स्टेशन पर अपने बटन को घुमा लेते हैं, उस कांटे को इधर घुमा लेते हैं। ध्यान रखिए उस कांटे में थोड़ी भी तब्दीली आ गई और एक बाल मात्र का अंतर रह गया तो आपके लंदन नहीं है, बीबीसी लंदन नो सिलोन। अब क्या करोगे? कहां से कहां आ गए आप? फिर बाद में वो भी नहीं है तो विविध भारती है। हाँ, तो अब क्या करोगे? और कभी कभी दोनों तरफ से आवाज आने लग जाती है। ये केवल स्पंदन का काम है, हवा के द्वारा भी वो कांटे कभी हिल जाते हैं और हिल जाते हैं तो स्टेशन से स्टेशन भी चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार किसी भी वातावरण के कारण आपके उपयोग रूपी कांटा भी हिल जाए तो क्या करोगे? कितना मुहूर्त के अनुसार काम करते हैं। दक्षिण में शादी वगैरह होती है, यहाँ पर भी होती होंगे, ऐसी बात नहीं। पंडित जी खड़े रहते हैं, घड़ी की ओर रहता है उनका दृष्टि, बस वो वहीं पर खड़े, ठहरिए 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 कहते अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, और जो है हाथ में जो चावल वगैरह जो कुछ भी ले रहते हैं, और जो ही वह सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा नहीं देखा जाता उस समय, घंटे का कांटा तो आप लोग देखोगे, उस समय तो घंटा भी नहीं और मिनट भी नहीं और सेकंड सेकंड भी नहीं है, ये तो विदेशी नापतोल है सेकंड। इसको भारतीय सभ्यता के अनुसार पल विपल प्रतिपल माने जाते हैं। एक सेकंड में 2.5 विपल माने जाते हैं, 24 सेकंड में 60 विपल माने जाते हैं, इसी प्रकार 1 मिनट में 2.5 पल माने जाते हैं और 24 मिनट में 60 पल माने जाते हैं। 24 मिनट के 1 घड़ी होती है, तो सूक्ष्म सूक्ष्म समय के मुहूर्त को निकालना चाहेंगे तो वह बहुत ही गौर से देखता रहता। 1 सेकंड भी यदि पहले मुहूर्त को चालू कर दिया तो जो कार्य होना था वह होगा नहीं। इतना सूक्ष्म है, हाँ इतना सूक्ष्म तत्व है। 14वें गुणस्थान में गए किंतु मुक्ति नहीं, और कुछ काम किए लेकिन मुक्ति नहीं, और काम किए लेकिन मुक्ति नहीं, किंतु उस कांटे को जिस समय वह वहीं पर 12 बजे के ऊपर लाते हैं तो उस समय खटाक से ही मुक्ति हो जाती है। ऐसे क्यों होता है? ऐसा नियम है, रास्ता भी तो मिलना चाहिए। बीज बोते हैं और एरंड का बीज समझ लो, वृक्ष बनता है, पौधा बनकर वृक्ष बनकर के फल फूल लग जाते हैं। जब वह फल पक जाता है, पकने को है, कितने दिन कह रहे हो आप पकने को है, कह तो रहे हैं, उसके रंग रोगन को देख करके कह रहे हैं, पकने को है, पकने को है, पकने को है, ये कुछ समझ में नहीं आता। भैया धीरे धीरे पक रहा है, वो काटा इस ओर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और जिस समय वह पूरा का पूरा पानी का अंश पक जाता है तो सूख जाता है, तो वह एरंड का बीज बिल्कुल सूख जाता है। फिर सूखने के उपरांत तो वह कभी भी उस बंधन को सहन नहीं करता, क्योंकि बंधन का अर्थ वक्रता है, बंधन का अर्थ चिपकन है, और चिपकन वक्रता के साथ ही संभव है। इसलिए दो गोल रहते हैं, उसमें बंधन नहीं। बंधन कहां पर है? गोल, दो गोल हैं, उनको चिपका सकोगे? एक गोल में दूसरे गोल को हम गोल तो कर सकते हैं लेकिन चिपका नहीं सकते। देर इज नो एंगल, वहां पर चूंकि कोण नहीं है, एंगल नहीं है, वक्रता नहीं है, तो फिर महाराज ये भी तो वक्रता, ये वक्रता नहीं मानी जाती है, कोण होना चाहिए। वर्तुल में कोई कोण नहीं होता, वह एक अंश माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। तो पूर्णता के साथ दूसरे का कोई बंधन नहीं है, तो वह पूरा का पूरा सूख गया और पूरी की पूरी सरलता आ गई, इसलिए वह वहां से ऊपर उड़ जाता है। आगे दसवें अध्याय में आने वाला है, स्वभाव सीधा होता है तथा एव गति कह देते हैं। अब अग्नि का उदाहरण देख करके मैं समाप्त करना, समय आपका 3 मिनट है शेष। अभी घड़ी की जो काटा है वह अंश को चल रहा है, बिल्कुल 4 के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल 12 के ऊपर आ जाएगा, अभी चल रहा है। तो देखो अग्नि है, अग्नि के पास भी स्पंदन क्रिया रहती है। अग्नि जब तक स्पंदित रहती, अथवा आपका जो दीपक है और दीपक की लो है वह जब तक स्पंदित रहती है तब तक आपको पढ़ने में भी डिस्टर, प्रकाश की कमी, और एक तीसरी बात है जलाने की क्रिया भी कमजोर रहती है। एक स्पंदनशील दीपक के ऊपर आप हाथ रखिए, आपका हाथ जलेगा नहीं, कुछ गर्माश तो मिलेगा लेकिन आपका हाथ जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? ये कि स्थान पर वह टिक जा फिर जल जा, इसका अर्थ यह है उस लोह में अभी स्पंदनशीलता है, उस स्पंदनशीलता के कारण जलाने की क्रिया उसमें नहीं हो रही है, जलाने की क्रिया नहीं हो रही। जब वह हवा के झोंका समाप्त हो जा और बिल्कुल बंद कमरे में और एक कोने में उस दीपक को रखा, बिल्कुल सीधी हो जाएगी, वक्रता समाप्त, और जो ही उसके ऊपर आप हाथ रखेंगे तो जलने लग जाए। इसी प्रकार ज्ञान की जब तक स्पंदनशीलता रहती है तब तक उसमें जलाने की क्षमता नहीं रहती। जलाने की क्षमता नहीं रहती का मतलब कर्म निर्जरा पूर्ण करने की क्षमता नहीं रहती। ज्ञान सीधा हो गया फिर बाद में कर्म वहां पर रुके, ये 3 काल में संभव नहीं। इसीलिए हमें अपने ज्ञान की वक्रता को पूर्ण करके सीधा बनाना है ज्ञान, और वह ज्ञान इसलिए वक्र हो गया है, पर पदार्थों को पकड़ने के लिए चला जाता है इसलिए उसके पास वक्रता आ गई। यदि पर पदार्थों को वह नहीं पकड़ेगा तो अपने आप में स्तब्ध रहेगा, अपने आप में स्तब्ध रहेगा। तो हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बार बार जो है लाइट यूं हो रही है उस समय पढ़ने की क्रिया कैसी होती है? आंख की ज्योति आती नहीं, जो थी वो भी चली जाएगी, और यदि सही लाइट है, प्रकाश है, तो आंख की ज्योति में कोई कमी नहीं आएगी, पढ़ने में सुविधा होगी। इसलिए स्पंदन के साथ पढ़ने की क्रिया, देखने की क्रिया और जलन की क्रिया आदि आदि नहीं चलती। उसी प्रकार ज्ञान का स्पंदन जब तक रहेगा तब तक हमारा यह कार्य, कर्म निर्जरा का कार्य, 3 काल में होने वाला नहीं है। यह आर्जव धर्म है जो सरलता का नाम है। यह सरलता हमारे मन में, वचन में और काय में, फिर साथ साथ हमारे ज्ञान में सरलता आ जा, बस यही दीनता, ज्ञान का दूसरे की ओर ढुलक जाना ही दीनता है, और ज्ञान का ज्ञान की ओर ही आना, वापस लौट करके आना, यह स्वाधीनता है। आप स्वाधीनता राज्य में जी रहे हो क्या पराधीनता में? महाराज कहने को तो 35 साल हो गए लगभग, और 35 साल में देख चुके हैं हमने, कई बार ध्वजारोहण हो चुके, ये हो चुके, और भी 10-20 साल कर लेंगे। फिर इसके उपरांत क्या सब जगह स्वतंत्र देशी मिलते हैं? ऐसे नियम थोड़ी, संसार ही परतंत्र है, आपकी परतंत्रता अभी मिटी नहीं है। कहने के लिए एक क्षेत्रीय स्वतंत्रता है, ज्ञान की स्वतंत्रता वही है जो पर की ओर नहीं मुड़े और स्व को ही सब कुछ समझ करके टिके रहे। कि अनंत काल होने के उपरांत भी केवल ज्ञान के सामने कोई लोभ खड़ा नहीं होगा, और उस लोभ के कारण उनका मन विचलित हो जाए, उनका ज्ञान प्रभावित हो जाए, संभव नहीं है। धन्य है वह ज्ञान जो पर की अधीनता स्वीकार नहीं करता, और धन्य है वह ज्ञान बिल्कुल टंकोतीर एकमात्र गायक पिंड बन करके रह गया है। धन्य है वह ज्ञान जिस ज्ञान रूपी ज्योति में 3 लोक झलक रहा है। धन्य है वह ज्ञान उस पूरे की पूरी 3 लोक को झलकन देख करके भी अपने आप के आनंद में मस्त हैं, लेकिन संसार जीव संसार में भटकने की इच्छा से त्रस्त हो गया है। कहाँ कहाँ पर रखा है, वहां पर क्या मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है, वो बहुत अच्छी है, हम तो ऐसी वस्तु तो देख ही नहीं थी, वो तो मेरे कुछ दे दो। इस प्रकार यह संसारी प्राणी अपनी दीनता को अभिव्यक्त कर रहा है। स्वभाव की ओर एक बार देखो, यह 10 लक्षण धर्म तभी सार्थक माना जाएगा। यह आर्जव धर्म हमारे पूज्य है, लेकिन ये ध्यान रखना इस पूज्य को तभी हम सही सही पूज्य के रूप में अंगीकार कर सकते हैं, इसके अनुसार हम चलें या इसको अपना जीवन बनाएं, आत्मसात कर लें। जिस प्रकार खाया हुआ अन्न देह में रग रग में घुल मिल करके खून रुधिर बन जाता है, उसी प्रकार यह आजव धर्म हमारा जीवन का अंग नहीं, जीवन ही बन जाए। महावीर।